ये आकाशवाणी है। अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को अनेक विकास परियोजनाएं समर्पित की। श्री मोदी ने यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गोबरधन संयंत्र की आधारशिला रखी तथा रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया।
विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े।
इससे पहले कल सुबह प्रधानमंत्री ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी तथा हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने वक्फ कानून में किए गए परिवर्तनों का समर्थन करते हुए कहा कि इनसे गरीब मुस्लिमों को लाभ होगा और जनजातीय भूमि को संरक्षण मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि भारतीय संविधान समय की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है और इसने देश को सुदृढ़, स्थिर और एकजुट रखा है। न्यायमूर्ति गवई कल नई दिल्ली में डॉक्टर आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा आयोजित प्रथम आम्बेडकर स्मारक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों के दौरान देश ने अनेक बाहरी दबाव और आंतरिक अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद ये एकजुट और सुदृढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्शिदाबाद में हुई घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डॉ. सुकांत मजूमदार ने घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लिखा है कि ये घटना केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानवीय संकट का मुद्दा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ संशोधन अधिनियम पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुश्री बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लागू न किए जाने वाला बयान संविधान के विरुद्ध है। श्री त्रिवेदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर हाल ही में संसद द्वारा पारित अधिनियम को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कल रात भीषण आग लग गई, जिससे मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। घटना के बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर अस्पताल पहुंचे। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 200 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा गया है।
लोकबंधु हॉस्पिटल में तृतीय तल पर धुआं देखा गया था, उसके बाद मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया गया, सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया, लगभग 200 मरीज थे और कोई हताहत नहीं हुआ है।
गंभीर मरीजों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है, जबकि कुछ मरीजों को सिविल अस्पताल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर 1,800 करोड़ रुपए मूल्य की 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर तटरक्षक बल ने विशेष अभियान के दौरान गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास एक जहाज को रोका। जहाज में सवार संदिग्ध तुरंत ही मादक पदार्थों को समुद्र में फेंक कर भाग गए। बरामद किए गए मादक पदार्थों को जांच के लिए पोरबंदर लाया गया है। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराकर लगातार 5 मैचों में अपनी हार का सिलसिला खत्म कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई ने 20वें ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान और गुजरात के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अंदेशा जताया है। विभाग ने कहा है कि केरल और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।